नाम सुने उनके, उन्होंने जीव कांड जो गोमर सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार आदि ग्रंथों की रचना की है, बृहद द्रव्य संग्रह, उन्हीं के द्वारा इस त्रिलोक सार नामक ग्रंथ की रचना हुई है। उसमें तो उन्होंने तीन लोक का पूरा विस्तार से स्वरूप वर्णन किया है। इसमें केवल भौगोलिक रचना का वर्णन नहीं है, यहाँ पर भी हमारे सामने जो अभी आप कार्तिकेयन अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किसी भी जो अनुप्रेक्षा का ग्रंथ निकाल लो उसमें लोक भावना का विस्तृत वर्णन है। लोक कहने से उसमें मात्र लोकाकाश नहीं है, परंतु लोक कहने से छह द्रव्यों का समूह उसको लोक कहा है, विश्व कहा है, तो उसमें छह द्रव्यों का वर्णन आता है। मुख्यतः उसमें कौन से जीव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, उनके परिणाम कैसे होते हैं, मरकर कौन से जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, कौन से जीव कैसी कैसी यानी अवस्था में रहते हैं, बहुत सारी बातें उनके संबंध में आती है। हम भी इसी ये जो त्रिलोक सार ग्रंथ है, जो मूल प्राकृत ग्रंथ था, उस पर अनेक अन्य टीकाएं भी हुई। पंडित टोडरमल जी ने भी अपनी देशी भाषा में, ढूंढारी भाषा में, त्रिलोक सार नाम से ही उसकी टीका लिखी है, और उस ग्रंथ के आधार से हम यहाँ तीन भुवन के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। बार बार हम ये तीन भुवन ऐसा नाम सुनते हैं। छड़ाला में भी आपने सुना होगा, क्या लिखा है वहाँ, याद है हंसा बेन? हाँ, वहाँ शुरुआत ही है, तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। कल भी आपने ये पढ़ा होगा कि वो त्रिभुवन तिलकम देवम वंदित्वा, पढ़ा ना काल, कि तीन भुवन में जो पूज्य है किसके द्वारा, तो तीन लोक के इंद्रों के द्वारा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये जो देवगति के जो जीव है वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये लोक के तीन भुवन यानी मध्य लोक है, अधो लोक है और ऊर्ध्व लोक यानी ऊपर का है, ऐसे ये तीन को तीन लोक कहते हैं। तो देव कहाँ रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में रहते ना, और कल, हाँ हाँ, ऊर्ध्व लोक में। आपके पास जो पन्ना है ना वो निकालो निकालो, कल आपने जो कार्तिकेयन उपेक्षा का पढ़ा था ना पहला, अभी आपने मंगलाचरण किया था, एक नंबर का श्लोक क्या लिखते हैं, त्रिभुवन तिलकम देवम वंदित्वा। ये देव कैसे है, त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यन, तीन भुवन के इंद्र, इसका अर्थ है अधोलोक में भी इंद्र है, मध्य लोक में भी है और ऊर्ध्व लोक में भी। हाँ, कौन से, वो तो नरक गति के थोड़े देव होते, नरक गति के नारकी होते। हाँ, ये भुवनवासी जो है व्यंतर है, कुछ वो नीचे रहते हैं, व्यंतर कितने ही मध्यलोक में, ज्योतिषी मध्यलोक में रहते हैं और वैमानिक ऊपर रहते हैं, तो ये तीनों ही लोकों के इंद्र, कल ही हमने देखा था। तो ये क्या है ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, उसकी बात हम देखेंगे यहाँ विस्तार से। पहले लोक किसको कहना उसकी बात कहते हैं, तो पहले ये हम देखेंगे कि लोक है कहाँ और वो कहना किसको लोक। कार्तिकेयन उपेक्षा में भी लोक भावना में 115 नंबर की गाथा में बताया है, वही गाथा यहाँ पर भी उद्धृत की, आपके पेज नंबर 7 है, 7 नंबर का पेज जैन भूगोल पुस्तक का,
के पुस्तक में 7वें पृष्ठ पर है।
देखो ये तीन श्लोक यहाँ, उसमें से बीच वाला ये कार्तिकेयन उपेक्षा गाथा नंबर 115 का श्लोक है, आपके पास पुस्तक होगी उसमें भी यही लिखा है, मैं पढ़ूंगी उसको। सौवागा समणंतम तस्य बहुमच्छ संठियोलो सोकेण विनेयको नयधरियो हरिहरादिहिं। ऐसी जो त्रिलोक सार गाथा तीन में भी ऐसी गाथा है, उसमें भी लिखते हैं सौवागा समणंतम तस्य बहुमच्छ देश भागम्मी लोगो संख पदेशो जगसेडी गणपमाणो। पहले हम कार्तिकेयन उपेक्षा गाथा का अर्थ देखते हैं, क्या कहते हैं, सर्व आकाश, आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, तो पूरा अनंत प्रदेश ही एक आकाश द्रव्य है, और उसके बीचों बीच में एट द सेंटर पूरे आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश कितना है तो असंख्यात प्रदेशी है, तो पूरे आकाश द्रव्य का वो अनंतवा भाग है जो उसके सेंटर में है, यानी ये लोकाकाश छोड़कर बाकी जो अलोकाकाश है। आकाश द्रव्य तो एक अखंड है, परंतु जहां अन्य सभी द्रव्य पाए जाते हैं उतने भाग को हम लोकाकाश कहते हैं। यानी सभी जीव द्रव्य कहाँ रहते हैं? उस लोकाकाश में। सभी अनंत अनंत पुद्गल राशि कहाँ पाई जाती है? लोकाकाश में। पूरा धर्म द्रव्य कहाँ पर स्प्रेड है? तो एक लोकाकाश में। पूरा अधर्म द्रव्य एक लोकाकाश में। आकाश तो लोकाकाश और अलोकाकाश मिलकर है, और सभी असंख्यात कालाणु कहाँ है? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो जहां ये सारे ही द्रव्य पाए जाते ही दिखाई देते हैं आकाश के अनंत वे भाग में, उस भाग को हम लोकाकाश कहेंगे, आकाश के भाग को, और उस सभी छह द्रव्यों के समूह को हम लोक कहेंगे। तो लोक कहने से मात्र लोकाकाश नहीं, मात्र स्पेस की बात नहीं है, तो ये छह द्रव्यों की बात है, उसको हम लोक कहेंगे। तो ये सर्व आकाश के अनंत वे भाग में, उसके बहुभद्य भाग में है। देखो यहाँ उसका अर्थ लिखा है, सर्व आकाश अनंत प्रदेशी है। तो हमने देखा था प्रत्येक द्रव्य कितने प्रदेशी, हमने यहाँ सीखा था सब है? तो आकाश द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है, जो लोकाकाश के बाहर दशो दिशा में अनंत 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 चले जाओ अपन कितना ही डिस्टेंस, तो ही उसका कोई एंड नहीं, उसको कहेंगे आकाश द्रव्य। उसके बहुबद्ध भाग में यानी बीचों बीच लोक है। यह लोक असंख्यात प्रदेशी है और घन स्वरूप है। घन यानी थ्री डायमेंशन वाला है, यानी उसको लंबाई भी है, हाँ चौड़ाई भी है, और उसको मोटाई भी है। यहाँ जो आपके सामने चार्ट में दिखाई देता है, आपके पुस्तक में भी है और सामने भी यहाँ चार्ट दिखाई देगा आपको। देखो ये जो आपको हमेशा ये चित्र मालूम है ऐसा, लोकाकाश जब हम कहते हैं तो केवल उसका फ्रंट व्यू हमें मालूम है, उसके चित्र हम देखते आए हैं। हमने तो ये लोकाकाश का चित्र देखा था ऐसा बारंबार, और उसके यहाँ कोई हाथ का भी चित्र होता है और नीचे लिखते हैं परस्परो जी परस्पराग्रह जीवाना, हाँ तो कहते हैं हमने इतना ही लोकाकाश मान लिया। कितना? यह ऐसा हाइट वाला और यह ऐसा विड्थ वाला, परंतु ये उसकी खाली फ्रंट व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, परंतु ये अंदर ऐसा दक्षिणोत्तर पूरा फैला हुआ है। तो इसके डायमेंशंस कितने क्या है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो है ये लोकाकाश की उसकी हाइट कितनी है, उसकी ये अलग अलग विड्थ कितनी है, और ऐसी दक्षिणोत्तर विड्थ कितनी है उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ लोकाकाश को गिनने का जो यूनिट है वो है राजू। राजू में ये माप बताएंगे वो कितना है, तो असंख्यात योजनाओं का एक राजू होता है, उसका परफेक्ट गणित आपको बताऊंगी, कभी आज ही बताऊंगी तो कल कोई नहीं आएंगे। तो ये कितनी हाइट है इसकी हम देखेंगे। ये जो है ना ऐसा यहाँ से ऐसा, ये पूर्व पश्चिम विस्तार कहेंगे, और यहाँ से पीछे इसे जो अंदर सर्वत्र समान जो है उसकी वीर उसको दक्षिणोत्तर कहेंगे। तो हमें जो मालूम है लोकाकाश वहां से ऊपर से नीचे तक ये कितना है, तो 14 राजू है, हम राजू में गिनेंगे इसको। अभी पूर्व पश्चिम देखेंगे तो ये बीच में यहां से लेकर यहां तक दो नंबर का, अच्छा हाँ चार्ट नंबर दो जो है वो फ्रंट व्यू, हम उससे परिचित है, पहले उसको देख के फिर हम एक नंबर पर जाएंगे। हाँ दो नंबर का चार्ट आप पहले दिखा ना, और फिर आपकी पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ देखना है। तो ये दो नंबर का चार्ट जो आपके सामने है उसको हम देखेंगे। हाँ देखो, हाँ ये हमारा वह लोकाकाश लगता है ना, पहले वाला अपना नहीं लगता है। तो ये लोकाकाश देखो, ये प्रोपोर्शनेट ड्रॉइंग है, इसके सभी जो फिगर्स है ओरिजिनल, उसके राजू के लिए जो कुछ यथायोग्य माप लेके बनाए हैं, तो इसकी हाइट है ऊपर से नीचे तक 14 राजू है। अभी इसके बीचों बीच जो यहाँ है ये एक राजू है, ये एक राजू, यहाँ से ऊपर 7 राजू है और नीचे 7 राजू है। नीचे सात राजू इसको हम अधोलोक कहेंगे और मध्यलोक से ऊपर जो सात राजू है उसको ऊर्ध्वलोक कहेंगे। अभी तो मैं बहुत मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ, फिर इसके डिटेल्स कुछ बताऊंगी। ये बीच में ये सब एक्स्ट्रा हुआ है ना, यहाँ तो एक राजू है और ऊपर सेंटर में जाकर यानी साढ़े तीन राजू ऊपर जाकर ब्रह्म स्वर्ग के पास ये कितना हुआ है तो पांच राजू चौड़ा हुआ है। फिर ऊपर लास्ट में जाकर एक राजू हुआ। यहाँ पर नीचे देखते हैं सबसे नीचे जो लोकाकाश का नीचे का एज है वो सात राजू है। देखो फिर से हाइट कितनी देखी हमने, चौदह राजू। और उसकी विड्थ वेरिएबल, नीचे सात राजू है, यहाँ एक राजू है, यहाँ पांच राजू है और फिर ऊपर एक राजू है। परंतु अभी हमने जो आपको एक नंबर का चार दिखाया था उसमें सर्वत्र ऐसा अगर हम स्प्रेड करेंगे उसको दक्षिणोत्तर, सर्वत्र उसकी चौड़ाई कितनी है तो सात राजू है। किसी भी क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, घनफल निकालना है, तो जो थ्री डायमेंशंस है उसका हम आपस में गुणाकार करेंगे तो हमें टोटल इसका क्षेत्र कितना है, पूरा लोकाकाश घन स्वरूप कितने घन राजू है, क्यूबिक राजू, उसका हमें वॉल्यूम मिलेगा, पूरा घनफल जिसको कहते हैं वो हमें मिलेगा। तो हमें मालूम है कि दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राजू है, यानी सात को गुणा करना है किससे, सर्वत्र उसकी हाइट चौदह है तो चौदह मल्टीप्लाइड बाय सात हुआ। परंतु यहाँ तो हीनाधिक है, कहीं एक है, कहीं पांच है, कहीं एक है, कहीं सात है, चार डायमेंशन हमें मालूम है। ऊपर यहाँ एक राजू है प्लस हम कहेंगे पांच, गिनना मिहिर, एक प्लस पांच फिर एक और फिर ये सात, चौदह, कितने में मिलकर चौदह हुए, चार में मिलकर डिवाइडेड बाय फोर, तो हमें एवरेज मिलेगा कितना मिला, हाँ चौदह डिवाइडेड बाय फोर। और बाकी दो डायमेंशंस कितने थे, एक चौदह वाली थी और एक चार वाली थी, तो चौदह बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय चौदह मल्टीप्लाइड बाय सात, इक्वलाइज करेंगे तो चौदह बाय फोर थे ना तो सात बाय टू हो गए, और जो टू हो गए उससे भी और चौदह को भाग देना, आपके पुस्तक में ये गणित बताए देखो। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, ये कुछ बहुत आठ नंबर के पेज पर, बहुत गहरा कुछ गणित नहीं है, ये सिंपल है, आठ नंबर के पेज पर देखो। देखो ये जो दूसरा पैराग्राफ है, लोक तो घन स्वरूप है यानी तीन डायमेंशनल है, तीन भुजाओं वाला त्रिमिति जिसको कहेंगे, उसकी ऊंचाई चौदह राजू, जैसे मैंने अभी आपको बताई चौड़ाई दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राजू, ये तो सर्वत्र समान है, और पूर्व पश्चिम दिशा में हीनाधिक है, नीचे सात राजू, मध्य में एक राजू, ऊपर साढ़े तीन राजू जाकर चौड़ाई पांच राजू, यानी साढ़े तीन राजू हाइट पर उसकी विड्थ जो है वो पांच राजू है, और अंत में यानी लोकाकाश के ऊपर के एंड में फिर एक राजू हो जाती है। पूर्व पश्चिम की इन चार जगहों का एवरेज सरासर होता है सात प्लस एक प्लस पांच प्लस एक, है ना, और उसको चार जगह की है इसलिए उसको डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो हमें उसका एवरेज मिलेगा, तो होता है चौदह चारांश यानी चौदह बटे चार, हिंदी में ये सात बटे दो यानी सात अपॉन टू हो जाएगा। यहां तक बात ख्याल में आई, यानी एक बाजू का हमने एवरेज कितना देने का सेवन बाय टू, दूसरी बाजू में चौदह है हाइट और एक है सात है, अब ये सेवन बाय टू इंटू चौदह, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, तो सात का घन करेंगे तो हमें पूरा लोकाकाश का वॉल्यूम मिलेगा, तो कितना होता है मिहिर भी भाई, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन हुआ, फोर्टी नाइन इंटू सेवन थ्री फोर्टी थ्री, तो इसको कैसे कहेंगे, थ्री फोर्टी थ्री यानी तीन सौ तैतालीस घन राजू कहेंगे, ये क्यूबिक हुआ ना अभी, हाँ क्योंकि एक एक डायमेंशन में हमने कैसे कैसे उसको गिनना उसको देख लिया था। तो सात राजू को यानी सात राजू गुना सात राजू गुना सात राजू, तो सात राजू का ये जो यूनिट बना है उसको कहेंगे जगत श्रेणी, श्रेणी लीनियर लाइन में जो गिनते उसको श्रेणी कहते हैं, सात राजू गुना सात राजू तो स्क्वेयर राजू हो जाएगा उसको कहेंगे प्रतर, तो 49 प्रतर राजू हो गया, उसको कहेंगे जगत प्रतर, ये टर्मिनोलॉजी है। एक है जगत श्रेणी सात राजू, सात राजू मल्टीप्लाइड बाय सात राजू उसको कहेंगे जगत प्रतर, और उसको और सात राजू से गुणा करेंगे तो कहेंगे जगत घन, जिसको कहेंगे लोक। यानी ये 343 घन राजू में वो एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, उसमें ये जो कितने प्रदेश होते तो कहते असंख्यात प्रदेश होते। इतनी बड़ी एरिया में एक एक प्रदेश को हम गिनेंगे, एक एक स्पेस पॉइंट को, तो कितने होते हैं तो कहते असंख्यात। और पूरा आकाश द्रव्य कितना है तो अनंत प्रदेशी। एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश है मालूम है? आत्म प्रदेश है, आपके अपने, इनके अपने, मेरे अपने, एक निगोद के, उसके अपने, सिद्धों के, उनके अपने। तो प्रत्येक जीव कितना प्रदेशी है आपको याद है परिमल बे? असंख्यात प्रदेशी। कितना बड़ा असंख्यात? क्योंकि असंख्यात के भी बहुत भेद है। तो जितना पूरा लोक है, अभी हमने जो थ्री डायमेंशनल लोक देखा है, एक जीव के प्रदेश अगर हम स्प्रेड करेंगे अलग अलग, अभी तो कैसे है सुपर इम्पोज कॉम्पैक्ट हो गए हैं, अगर उसको सिंगल सिंगल अलग डिवाइड करेंगे, ऐसा पूरा स्प्रेड करेंगे, जैसे केवली समुद्घात में होता है। नाम सुना है कभी केवली समुद्घात का? नहीं सुना। पहले में पहले समुद्घात क्या होता है उसको समझेंगे। समुद्घात यानी मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर फैल जाना, यानी शरीर में भी और बाहर भी है, तो उसको कहेंगे समुद्घात। क्या कहते हैं? समुद्घात। ऐसे बहुत टाइप के समुद्घात होते हैं। यह मैंने कौन सा नाम लिया? केवली समुद्घात। यानी 13वें गुणस्थान का अंत होने का समय आया। अभी 14वां गुणस्थान कितना है तो बहुत छोटा है। ये पांच लघु स्वर बोलते हैं ना, अई उरुलू, अ ई उरुलू, इतना बोलने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना 14वां गुणस्थान का काल है अयोग केवली का। और उसके पहले अभी 13वें का अंत आया है। और ऐसी पोजीशन में आयु कर्म तो अभी अंतर्मूर्त यानी अई उरुलू, इतना कहने के लिए जितना समय है उतना है, और अन्य तीन कर्मों की स्थिति बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आयु तो खत्म हो गई और बाकी तीन कर्म बाकी रहे। तो सभी की स्थिति समान होने के लिए सहज रूप से ये समुद्घात क्रिया होती है। क्या होते हैं? केवली भगवान के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, उसको कहेंगे केवली समुद्घात। तो पहले समय में क्या है, जैसे वो सीधे खड़े है या ऐसे बैठे है, तो उनकी जो डायमेंशन यानी उसके जो डायमीटर हम देखेंगे, उसका जो स्प्रेड है, तो ऐसे ही पूरे नीचे से ऊपर तक खंबे जैसे आत्म प्रदेश फैल जाते हैं पहले समय में, पिलर जैसे हो जाते। दूसरे समय में ऐसे आड़े फैल जाते हैं, ऐसी तो विर्थ जिसकी उनकी बॉडी विर्थ है उनके है, और बाकी ऐसे लोकाकाश के एज तक, एक्सेप्ट वात वलय। ये वात वलय क्या है उसको हम देखेंगे। तीसरे समय में क्या होता है, अभी ऐसे फैले दूसरे समय में, तीसरे समय में लोकाकाश के एज तक ऐसे फैलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर चौथे समय में क्या होगा कि वो वात वलय को छोड़कर फैले थे तो वात वलय के अंत तक फैलेंगे सभी ओर चारों ओर, तब कहेंगे पूरे लोक में वे आत्म प्रदेश फैल गए। एक एक समय में एक एक स्टेप बाय स्टेप फैलते हैं, फिर एक एक समय में फिर वापस लौटते हैं। तो ये पूरे लोक में फैले थे उसको कहेंगे लोक पूरन, फिर वात वलयों में से फिर अंदर समेट जाएंगे उसको कहेंगे प्रतर, फिर जैसे आगे पीछे फैले थे कपाट, पहले मूल जब फैले थे तभी पहला जो था उसको कहेंगे दंड, दूसरे समय में ऐसा फैले थे उसको कहेंगे कपाट, तीसरे समय में आगे पीछे भी फैले थे उसको कहेंगे प्रतर, और वात वलय सहित सर्वत्र फैलते हैं उसको कहेंगे लोक पूरन यानी पूरे लोक, फिर वापस प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, और फिर मूल शरीर में प्रवेश करते हैं। वहां क्या पोजीशन होती है कि एक वो मुनिराज है अरिहंत अवस्था में है, तो उनके आत्म प्रदेश कितने फैले तो पूरे लोक जितने। इससे क्या सिद्ध होता है, प्रत्येक जीव में आत्म प्रदेश कितने हैं तो लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने, परंतु वो पूरा जो सब्सटेंस है अभी कितना है तो अभी देह प्रमाण है, उसमें से प्रदेश एक भी हीनाधिक नहीं होता है। यही जीव मरकर चींटी हो जाए तो उतने सारे के सारे आत्म प्रदेश उसमें कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और वही जीव कोई बड़ा महामत्स्य हो जाए, आपने डायमेंशन सुनी होगी ना लास्ट टाइम, 12.5 करोड़ घन योजन, इतनी अवगाहना एक मत्स्य की, इतना बड़ा हो जाए तो कुछ प्रदेश तो नहीं बढ़ेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, परंतु जीव का एक भी प्रदेश कम नहीं होता और अधिक नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उसके 2-4 टुकड़े नहीं होते। तो यहां से हाथ कट हो जाए तो आत्मा में कितनी हीनता आ गई, कितने प्रदेश कम हो गए उसके, कुछ भी नहीं, दांत, अच्छा दांत में तो वैसे भी आत्म प्रदेश नहीं है, है ना। तो हमने माना कि नहीं माना, जो कोई ठिंगना है उसमें कितने आत्म प्रदेश है, असंख्या, और बहुत हाइट वाला 6 फुट वाला होगा उसके तभी। हमारे यहाँ की बात मालूम नहीं, हिंदुस्तान में तो बहू लानी है तो कैसी चाहिए, वो ठिंगनी नहीं चलेगी, हमारा लड़का हमारा बच्चा हाइट वाला है तो वो भी उतनी चाहिए। मेरे रिलेशन में ये बात बनी थी, तो उसका लड़का 5 फुट 11 इंच वाला, बहुत सी लड़कियां देखी पसंद ही नहीं आई, तो फिर आखिर में एक लड़की उसके पसंद में आ गई, तो माँ को चिंता हुई, उसका मेरे को फोन आया कि उज्ज्वला ये ऐसी ऐसी बात है, उसने लड़की पसंद की, ये तो इतना हाइट वाला है और वो लड़की की हाइट है 4 फुट 10 इंच, तो मैं क्या करूं, मैंने तुझे परेशानी क्या है, 1 फुट का हाड़ और मांस लेके तू क्या करने वाली है। और सचमुच फिर भी वो भी मान गई, और वो लड़के को तो पसंद थी ही थी, शादी हुई, अभी यहाँ कैलिफोर्निया में अच्छे से रह रहे। तो क्या हमने माना कि उसमें परिपूर्णता है, हमने अपने को हीन दीन माना, ख्याल में, यहाँ तो हमारी बात हुई कि प्रत्येक जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेश, ये लोकाकाश में जितने प्रदेश है उसके एक जीव के आत्म प्रदेश है, और वो अभी देह प्रमाण में रहते हैं, तो एक जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण, और ऐसे जीव कितने हैं, अनंत जीव है, और वो सारे कितने में रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं, इसका अर्थ ख्याल में आता है, एक जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण, और ऐसे जीव है अनंत, और वो सारे रहते एक लोकाकाश में, यानी जीवों की अवगाहना छोटी बड़ी है, वो तो प्रदेश एक दूसरे में सुपर इम्पोज होकर ऐसे कॉम्पैक्ट रूप से रह रहे हैं, ख्याल में आते, किसी के स्प्रेड हो जाए तो इतने बड़े हो जाते। हम ये भी देखा है एक निगोद शरीर में जीव कितने रहते हैं, अनंत, शरीर कितना है, इतना कि आंखों से दिखे भी नहीं, क्योंकि निगोद तो हमने केवल शास्त्र में पढ़ा है, अभी हमारे साइंटिस्ट को वो निगोद नहीं मिला है, अभी तो वायरस मिले और उसके थोड़े थोड़े छोटे कुछ चीजें मिली है, तो वायरस है कि नहीं है, अरे है ना, हमारे डॉक्टर बताते हैं ना क्या हुआ, वायरल फीवर हो गया, देखा आपने नहीं, कितना विश्वास है, 100%, हाँ, और वो हम कहते हैं कि वो बटाटे के एक टुकड़े में असंख्य तो शरीर है, देह है, और एक एक देह में अनंत जीव है, कितने अनंत, कि 3 काल में जितने सिद्ध होते हैं उसके अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं, यानी एक निगोद शरीर के अनंत वे भाग प्रमाण जीव भी 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे, इतनी बड़ी जीव राशि इसकी अनंतता है, और हमें चिंता क्या है, इतने जीव सिद्ध होंगे तो यहाँ संसार में कौन रहेगा, चिंता अपना क्या होगा उसकी नहीं है, ये संसार का क्या होगा। अरे परंतु इस बात को हम इस पर्याय में अभी इस मनुष्य भव में जो हमें ये सारा शास्त्राभ्यास की मुख्यता यहीं पर है, और हमें ये जो सुवर्ण जैसा अवसर मिला है उसको हम खो देंगे तो ये पूरे लोकाकाश में न जाने कहाँ भटकेंगे, हम ये देखेंगे किस किस पर्याय में जीव पाए जाते हैं, तो हमारा क्या होगा कभी ऐसा विचार ही नहीं आता है, क्योंकि ये तो पर्याय हमेशा, पर्याय बुद्धि की बात की ना, ये मनुष्य पर्याय तो हमेशा तो रहने वाली नहीं है, हम 50-60 पहले साल पहले कौन सी पर्याय में थे हमको तो पता नहीं है, अभी हम मनुष्य हुए हैं तो इसके पहले थे कि नहीं, उसके पहले थे कि नहीं, उसके पहले थे कि नहीं, तो ये पूरे इतने बड़े लोकाकाश में कहाँ कहाँ होकर हम आए हैं, हमें कहाँ पता है? तो ये क्यों जानना है हमें? तो हमें ये जानना है कि कौन कौन सी पर्याय के जीव कहाँ कहाँ किस अवस्था में रहते हैं, और इसमें से अगर छूटकर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या हमें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका भी हमें पूरा इसी में से उत्तर मिलने वाला है। तो हम तो यहाँ लोकाकाश के पहले डायमेंशंस देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये जो लोकाकाश है, 14 राजू हाइट वाला है, दक्षिणोत्तर 7 राजू है, पूर्व पश्चिम हीनाधिक है, परंतु हमने सबकी टोटल निकाली, उसका डायमेंशन निकाले तो कितने हुए, 343 घन राजू। यहाँ तो ख्याल में आई बात इतनी, क्योंकि देखो इसको पढ़ते आगे 8 पेज पर ही निकालना आप, ये जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ। आपको प्रश्न पड़ा होगा कि इस राजू का क्या नाप है, इसका प्रमाण तो बहुत बड़ा है, एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। अब यहाँ जो योजन है वो सामान्य जो योजन है ना, 4 कोस का एक योजन कहलाता है। एक कोस कितना है, 2 माइल का एक कोस है, और 4 कोस का एक योजन होता है, ये ऑर्डिनरी योजन है। जब यहाँ हम सब भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे, या जहाँ ये द्वीपों की जो डायमेंशंस बताई जाती है, वहाँ महायोजन का प्रमाण होता है। तो एक योजन सामान्य रूप से 4 कोस का होता है, परंतु यहाँ महायोजन से गिनना जो 500 गुना बड़ा होता है, अर्थात 2000 कोस यानी 4000 मील का एक योजन होता है। यहाँ से इंडिया कितने दूर है, 2000 ख्याल में आया ना, ये योजनों में कितना है। यहाँ सूरज कितना दूर है, साइंटिस्ट तो वो लाइट उसमें लाइट मिनट या लाइट सेकंड सही से गिनते हैं, तो 8 मिनट है उनके प्रकाश मिनट, 8 प्रकाश मिनट दूरी पर है सूर्य, और हम क्या कहेंगे या अपने ग्रंथों में क्या लिखा है, 800 योजन दूरी पर है। ख्याल में, यहाँ तो सारे माप है, किसी ने बनाए नहीं है, जो है उसका कथन है। तो ये अभी हम राजू की बात देखेंगे, एक राजू कितना देखा हमने, 7 राजू को जगत श्रेणी कहा था, यानी जगत श्रेणी जो हमने देखी ना, यहाँ पर 7 राजू ऐसा है, 7 राजू ऐसा है, तो उसका 7वां भाग करेंगे तो 1 राजू आ गया, और 1 राजू में कितने हैं, तो असंख्यात योजन होते हैं। एक योजन कितना बड़ा है, तो कहेंगे 4000 मील का एक योजन होता है, और ऐसे असंख्यात जिसकी गणना नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े तो राजू होते हैं। अब इसको आगे के पेज पर बहुत विस्तार से समझाया है, हम उसको थोड़ा गौण करके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपने मेरू पर्वत का नाम सुना है, जिसको सुदर्शन मेरू कहते, कितने मेरू है मालूम है, 5 मेरू है, उसमें सबसे सेंटर वाला जो बीच का, जो अभी हम सब पढ़ेंगे, ये असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, और उसके बीचों बीच सेंटर में मेरू पर्वत है, कौन सा, सुदर्शन मेरू पर्वत, जिसको सुमेरू पर्वत भी कहते हैं, और वो कितना हाइट वाला है, 1 लाख और ऊपर 40 योजन, उसमें से उसकी नींव कितनी है, तो 1000 योजन डीप पृथ्वी के अंदर है, तो जो 1000 नीचे अंदर है, वो 1000 योजन नीचे जो सेंटर है, उसका सेंटर पॉइंट, उसको कहेंगे लोकाकाश का सेंटर है, वो लोकाकाश का हाइट वाइज भी मध्य है। वहां से ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक कहलाएगा, और नीचे 7 राजू अधोलोक कहेंगे, मध्यलोक वही 1 लाख, ऊर्ध्वलोक का ही जो 1 लाख योजन का जो पार्ट है ना, जितनी मेरु पर्वत की हाइट है उतना मध्यलोक कहलाएगा, और ऊपर सारे वो जो क्या रचना होती है उसकी बात हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अभी लोकाकाश का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो सेंटर में एक प्रदेश होना चाहिए ना, तो कहते नहीं, क्योंकि सम संख्या है, ये जो हम ऐसा गिनते हैं राजू का नाप, एक राजू है, अभी वो तो राजू उसके हम वो पूरा गणित निकालेंगे तो वो तो सम संख्या आती है, वो क्यों आती है, उसका समझना है तो गणित के डिटेल में जाना, मिहिर आपके लिए, बाकी लोगों के लिए छूट है। तो हम किसी सम संख्या का सेंटर निकालना चाहते हैं, जैसे ये मेरी 10 उंगली है, अब इसके सेंटर में क्या होगा, 2 उंगली सेंटर में आएगी, एक किसी उंगली को हम सेंटर नहीं कह सकते। अगर 3 होती है तो बीच के एक सेंटर हो सकती है, और 4 होगी तो बीच के 2 को सेंटर कहना पड़ेगा। ऐसे ही तीनों ही डायमेंशन में सम संख्या रूप प्रदेश है, भले असंख्यात है, तो ऐसे 2, ऐसे करेंगे तो 2, और हाइट वाइज भी 2, तो तीनों ओर से अगर हम देखेंगे तो 2 का घन बीच में 8 प्रदेश होते हैं, लोकाकाश के सेंटर में 8 प्रदेश आएंगे। तो ये है लोकाकाश का सेंटर, और वो कहाँ आता है, मेरु तल के नीचे, उसके सेंटर में, बीचों बीच। तो ये नीचे क्या क्या है, ऊपर क्या क्या है, उसकी रचना हम देखेंगे। देखो 9 पेज पर देखना है आपको, नीचे से दूसरी लाइन, नहीं नीचे से दूसरा पैराग्राफ ही देखेंगे। देखो इस लोक के 3 भेद है, जिन्हें हम 3 लोक, 3 भुवन या त्रिलोक नाम से जानते हैं, क्योंकि 3 भुवन बार बार हम सोच रहे हैं, ये भुवन क्या होता है, उसको, ये जो लोकाकाश के जो 3 भाग हमने किए हैं, ये नीचे का भाग उसको अधोलोक कहेंगे, ऊपर का भाग उसको ऊर्ध्वलोक कहेंगे, और बीच वाला जो है उसको मध्यलोक कहेंगे, उसी को 3 भुवन भी कहेंगे, उसी को त्रिलोक भी कहेंगे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधो यानी नीचे का, पूर्व पश्चिम, जहां मध्य में 1 राजू चौड़ाई है, वहां से नीचे 7 राजू अधोलोक है, और ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है। बीच में पूर्व पश्चिम 1 राजू और दक्षिणोत्तर 7 राजू मध्यलोक है। क्या कहा, बीच में, अभी जरा वो नक्शा 1 नंबर का चार्ट निकालना है आपको, ये 2 नंबर है ना, 1 नंबर का हम चार्ट देखेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि ये हम पृथ्वियां देखेंगे अभी कैसी कैसी फैली है। जब यहाँ कोई टर्मिनोलॉजी आती है, प्रत्येक साइंस में उस टर्मिनोलॉजी का अर्थ उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें सीखना है। जब यहाँ पृथ्वी शब्द हम लेंगे तो हमारा वो गोल पृथ्वी नजर के सामने नहीं लाना। यहाँ पृथ्वी का अर्थ ऐसा होता है कि जो लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक फैली, उसको पृथ्वी कहते हैं। ये हमारी एक पहले बीच की पृथ्वी है, पूर्व पश्चिम 1 राजू और दक्षिणोत्तर 7 राजू। ये तो 2 डायमेंशन बताए हैं, ये तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये भी बाकी ऐसे पूरी फ्लैट फैली हुई, उसको हम यहाँ पृथ्वी कहेंगे। पृथ्वी किसको कहना, लोकाकाश के एक एज से दूसरी एज तक जो फैली है उसको यहाँ पृथ्वी कहते हैं। ये हमारे प्लैनेट जैसी, उसके वो अर्थ यहाँ मत लेना, वो यहाँ कहाँ फिट बैठती है उसके विचार अभी नहीं करेंगे, उसके बाद में करेंगे। तो ये जो ये पहली पृथ्वी है जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, कि ऐसी वो लोकाकाश की ऐसी पूर्व पश्चिम 1 राजू है और ऐसी 7 राजू फैली है, उसके नीचे क्या है वो देखेंगे। फिर ये उसके बीच में कुछ अंतराल असंख्यात योजन छोड़कर ये दूसरी पृथ्वी, अभी देखो नीचे लोकाकाश कैसे हो रहा है, नीचे वो विस्तार हो रहा है, तो पृथ्वियां भी दक्षिणोत्तर सभी 7 राजू रहेगी, परंतु जो पूर्व पश्चिम पृथ्वी का विस्तार है वो ऐसा फैलता जाएगा, नीचे ये और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी। ऐसे ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है, और हर एक के बीच में अंतराल है असंख्यात योजनों का। उनकी मोटाई तो ये पहली पृथ्वी तो बहुत मोटी है, वो कितनी है साइड में लिखा है ना, 1,80,000 योजन वाली मोटी है, और फिर दूसरी पृथ्वी वो थिन होती जाती है, वो 32,000 योजन की है, तीसरी पृथ्वी है 28,000 योजन की है, चौथी पृथ्वी है 24,000 योजन की है, पांचवी पृथ्वी है 20,000 योजन की है, ये छठी है 16,000 योजन की है, सातवीं पृथ्वी जो है यहाँ ये 8,000 योजन की है। कितनी पृथ्वियां है ऊपर की हम भूल गए, यहाँ ऊपर ये 8वीं पृथ्वी है, ये भी ऐसी 1 राजू और ऐसी 7 राजू है, उसका नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी, और उसकी मोटाई कितनी है 8 योजन मात्र है। व्यर्थ। ये पृथ्वी के बीचों बीच, देखो यहाँ एक डॉट दिखाई देता है आपको, मात्र एक डॉट। तो ये ऐसी जो सात राजू है उसके बीचों बीच ये एक राजू का स्क्वायर दिखाया है, और वो स्क्वायर नीचे तक ले गए है, 14 राजू हाइट वाला, सेंटर से शुरू होता है और ये नीचे सेंटर तक पहुंचा है। देखो ये इन बिटवीन लटकता नहीं है। लोग पूछते हैं ऐसा लटक क्यों रहा है, क्योंकि ये ऊपर हाइट से शुरू है ना, सेंटर से। तो यहाँ से आप गिनेंगे तो ये भी, इसकी भी हाइट 14 राजू है। इसको क्या कहेंगे, ये त्रसन आदि है। इसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको भी देखते हैं हम। तो ये जो त्रसन आली है, एक राजू बाय एक राजू स्क्वायर वाली, उसके बीच में एकदम यहाँ जो डॉट जैसा है, जो 45 लाख योजन वाला, उसी आठवीं पृथ्वी के 8 योजन मोटाई में सेंटर में एक पीस है रॉक का, उसको कहेंगे सिद्धशिला। उसकी डायमीटर कितनी है, तो 45 लाख योजन की। सेंटर में मोटाई कितनी है, तो 8 योजन की। और टेपरिंग ऐसा हो जाता है, नीचे ऐसे गोलाकार है, जैसा आपका कोई पतेला या ऐसा रखते हैं ना, हाँ हाँ, वो कल हमने बताया था आपको सिद्धशिला को। तो उसका ऐसा कितना, सेंटर में 8 मिलीमीटर, हम योजन के बदले मिलीमीटर लेंगे, ऐसा 8 मिलीमीटर और ऐसा 45 लाख मिलीमीटर, उसके किलोमीटर कितने हो गए, 4.5। ऐसा हम 8 मिलीमीटर और ऐसा 4.5 किलोमीटर, ऐसा कोई अगर ड्राइंग करेंगे तो उसका कर्वेचर कितना होगा, नहीं के बराबर होगा। तो हम बिल्कुल उसको चंद्र जैसा सीधा, ये सिद्धशिला कैसे बताते, चंद्रकोर जैसे, वो तो उसको बढ़ावा चढ़ावा करके ऐसा बताए, परंतु वो ऐसी है। और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, पूरी आठवीं पृथ्वी का ही वो सेंटर का पीस है, जो कैसा है, सफेद है, वो छत्राकार नीचे से ऐसा है, वो सब उसका वर्णन आता है। और उसको सिद्धशिला क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मनुष्य लोक है वो 45 लाख योजन का है। वो मनुष्य लोक किसको कहना, उसमें कितने द्वीप समुद्र है, उसकी बातें करेंगे हम। तो उतनी एरिया में से सिद्ध भगवान जब, यानी अरिहंत जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते, तो सीधी श्रेणी में आकाश की सीधी पंक्ति में ऊपर चले जाते हैं। तो उतने ही एरिया से सभी सिद्ध हुए हैं। क्या यहां से भी कोई सिद्ध हुआ क्या, नहीं हुआ? ये 45 लाख योजन में से एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां से सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वहां तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। तो कहते यहां से कहां हो गए, कल तो आपने पूछा ये तो अनार्य देश है, यहां से कहां हो रहे हैं। इसको अनार्य मत समझना, ये आर्यखंड का ही पार्ट एंड पार्सल है, मलेच्छ खंड तो अलग होते हैं। फिर भी सभी, यानी द्वीपों में से और समुद्रों में से भी हुए, क्यों, कोई मुनिराज ध्यान में बैठे है, और फिर कोई पूर्वभव का वैरी देव उठा लेता है, और कहीं पर भी वो मनुष्य क्षेत्र में कहीं भी पटक देता है, कहीं समुद्रों के ऊपर से फेंक देता है, कहीं पर्वतों में से पछाड़ देता है, या कहीं भी भोग भूमि में भी जाके डाल देंगे, या कहीं पर भी। तो वहां से वो ध्यान में लीन है, तो वहीं से श्रेणी मानना है ना, वो तो 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान करके अरिहंत भी हो गया, और तत्काल 14वां पार करके सिद्ध भी हो गया, वहीं से वो पूरे सिद्धालय में विराजमान हो गए। इसीलिए उसको पूरे ही क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला कहते हैं उसको। परंतु उस सिद्धशिला को कोई भी सिद्ध जीव टच नहीं कर रहा है। कल हमने बात की थी, उसके बहुत ऊपर है, उसके ऊपर तो 3 वात वलय है, 3 लेयर्स है वात वलयों के, और सबसे ऊपरी वात वलय कितना देखा था हमने, 1575 योजन, और ये योजन है महायोजन। और सिद्धों की अवगाहना मैक्सिमम कितनी बड़ी होती है, 525 योजन, और वो यानी ऑर्डिनरी योजन है। तो वो ऑर्डिनरी यानी वो 1575 महायोजनों को अगर हम ऑर्डिनरी योजनों में कन्वर्ट करते हैं, तो कहते उसके कितने खंड करने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ लिखी है, उसके कुछ एक मिनट, आप ये पेज नंबर निकालना 22। पेज बीच वाला बड़ा पैराग्राफ उसके सेंटर में लिखा है। देखो यहाँ 1575 धनुष कहा, यह महाधनुष है, यह सामान्य धनुष से 500 गुना होने से यह तनुवात वलय 1575 × 500 ये 7,87,500 धनुष हो जाता है। और सिद्ध भगवान की मैक्सिमम हाइट कितनी है अवगाहना, उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा है 525 धनुष, ये सामान्य धनुष है। तो इसका अर्थ क्या होता है, वो तनुवात वलय के हम 1500 खंड करेंगे तो एक खंड प्रमाण भाग में सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना, अवगाहना उनकी हाइट उनके साइज, यानी 525 धनुष वाले सिद्ध भी उसके 1500वें भाग में पाए जाएंगे, इतने बड़े वो तनुवात वाले। और छोटे में छोटा साइज सिद्धों का कितना होगा, यानी कौन कितने 3.5 हाथ, हाँ यानी 7/8 धनुष की बात है यहाँ, तो यानी कितने होते 3.5 हाथ प्रमाण सिद्धों की छोटी में छोटी अवगाहना, तो वो तो कितने खंड पड़ेंगे, तो 900,000 खंड करेंगे, तो उसमें से एक खंड प्रमाण तो ये सिद्धों की अवगाहना है, यानी मिनिमम से मैक्सिमम साइज की इतने वाले जो बीच में वेरियस साइज वाले साधे सारे सिद्ध भगवान तनुवात वाले के अंत में विराजमान है। अब वो भी प्रत्येक वात वाले कैसा होता है क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। हमने तो अभी 8 पृथ्वियां देखी, पृथ्वी हम उसको कहते हैं लोकाकाश के एक एज से दूसरे एज तक फैली, उसको यहाँ पृथ्वी कहेंगे, हमारे दूसरे भाषा में जो उसके हम नाम देखते उसको यहाँ कंपेयर मत करना, जैसे कंप्यूटर में जो टर्मिनोलॉजी वो वहीं पर, वो घर में जो विंडो होती वो अलग है और वहाँ होती वो अलग है, घर में जो माउस पाए जाते हैं वो अलग है और वहाँ का माउस अलग है, वैसे आपके वो जियोग्राफी वाली पृथ्वी अलग है और यहाँ जो पृथ्वी कहे तो यहाँ का अर्थ यहाँ ग्रहण करना, फिर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके हर पृथ्वी के नीचे ऊपर क्या होता है आदि बातें हम कल देखेंगे, अभी हम यहाँ विराम लेते हैं। बोलो 2400 भगवान की।